ボルテダイヤ。समाचार सेवा प्रभाग के कार्यक्रम पूर्वोत्तर डायरी में आप सभी का स्वागत है। स्वीकार कीजिए चंद्रिका जोशी का नमस्कार। आज के संस्करण में एक बार फिर हम आपके लिए लेकर आए हैं पूर्वोत्तर के विभिन्न क्षेत्रों से नई नई जानकारियां। तो आइए चलते हैं आधे घंटे के लिए देश के पूर्वोत्तर के हमारे अष्टलक्ष्मी राज्यों की ओर, जहां पूर्वोत्तर की अद्भुत क्षमता, प्रकृति की सुंदरता और पारंपरिक विरासत को शब्दों के माध्यम से आप महसूस करेंगे। पूर्वोत्तर जो सुंदर है, सद्भाव की जहां शक्ति है, और ऐसा पूर्वोत्तर जिस पर देश गर्व करता है। तो आइए चलें पूर्वोत्तर की ओर।
पूर्वोत्तर डायरी।
पहली बात मेघालय की। मेघालय समाज कल्याण विभाग अपने संबंधित अधिकार क्षेत्र के ग्राम रक्षा पार्टी VDP को संगठित करने के लिए अपने प्रमुखों को प्रोत्साहन प्रदान करेगा।
The state government wants to involve the communities through the VDPs to eradicate the menace of drugs from the society.
ये निर्णय मेघालय से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के उद्देश्य के अनुरूप है। इससे राज्य सरकार की मशीनरी और समुदायों के बीच घनिष्ठ समन्वय की सुविधा मिल सकेगी। राज्य सरकार ने मेघालय में ड्रग्स और नशीले पदार्थों के खतरे को खत्म करने के लिए ड्रग रिडक्शन एलिमिनेशन एंड एक्शन मिशन यानी ड्रीम शुरू किया था। समाज कल्याण मंत्री पॉल लिंगदोह ने बताया कि सभी से सुझाव और प्रस्ताव मांगे जा रहे हैं, ताकि विशेष रूप से नशीली दवाओं के खतरे से जूझ रहे पूर्वी खासी हिल्स में ग्राम रक्षा दलों को मजबूत करने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, इसके रास्ते तलाशे जा सके।
इट्स अ मल्टीफैसेटेड सिनेरियो वेयर वी नॉट ओनली एड्रेस इट एज अ क्राइम टू बी डिटेक्टेड एंड चेक्ड, बट आल्सो as an initiative that has to begin from the family, which is why you will see that we have engaged civil society, faith-based organizations and Dr. Varshinoms. The most effective instrument at the local level would be the Dr. Varshinoms, and we have sought their active participation. We have gone across the state, and right now as we speak, this World Drugs Day is being observed throughout the length and breadth of Meghalaya. Awareness programs have been organized even at the level of hamlets and villages. So we are proactive as a government.
श्री लिंगदोह ने यह भी बताया कि पूर्वी खासी जिले में नशीली दवाओं के खतरे के खिलाफ लड़ाई में राज्य सरकार की मशीनरी के साथ काम करने के लिए इन VDP यानी ग्राम रक्षा पार्टी को संगठित करने और सशक्त बनाने की प्रक्रिया जारी है। अब लिखित रूप में सभी से सुझाव इकट्ठे करने होंगे, और न केवल पूर्वी खासी हिल्स बल्कि समूचे मेघालय में VDP को पुनर्जीवित करना शुरू करना होगा। समाज कल्याण विभाग मेघालय में VDP के स्वयं सेवकों को प्रोत्साहित करने के लिए केंद्र सरकार से वित्त पोषण की संभावनाएं भी तलाशी जा रही हैं, ताकि इस कार्यक्रम को वित्तीय रूप से सशक्त बनाया जा सके।
As I mentioned, we have solicited their opinion on the current framework of the VDP. We will also be accessing funding from the ministry, from Government of India, and we should be in a position to incentivize volunteers of these VDPs.
सरकार विशेष रूप से शिलंग शहर सहित चिन्हित हॉटस्पॉट में ग्राम रक्षा दलों को शामिल करना चाहती है। सरकार इसे केवल एक सरकारी पहल के रूप में नहीं देखना चाहेगी, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण है और नशीले पदार्थ, नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए इसमें नागरिक समाज की भागीदारी को व्यापक बनाने की आवश्यकता महसूस की जा रही है। ग्राम रक्षा दलों के कर्तव्यों और उनके कार्यों में जरूरत पड़ने पर कानून और व्यवस्था, शांति बनाए रखने में पुलिस की सहायता करना, और फिर चोरी और ऐसी ही अन्य घटनाओं को रोकने के लिए पार्टी के लिए आवंटित क्षेत्र में गश्त करना भी इसमें शामिल है। राज्य सरकार समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए VDP के माध्यम से समुदायों को शामिल करना चाहती है। सरकार वर्तमान में अपने उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए राज्य भर में वीडीपी की उपस्थिति को सुधारने और उसमें लगातार संशोधन करने के प्रयास कर रही है.
The government is currently making efforts to revamp and revise the presence of VDPs across the state to achieve its objective. This is Lamphang Nongstung from AIR News, Shillong.
बात मिजोरम की. मिजोरम की राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति ने आइजोल में पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे के अधिकारियों के साथ बैराबी सेरांग नई रेल लाइन परियोजना की स्थिति की समीक्षा की. बैराबी सेरांग के बीच की दूरी लगभग 51 किलोमीटर है. रेल अधिकारियों ने राज्यपाल को रेल निर्माण परियोजना पर नवीनतम जानकारी प्रदान की. डॉ कंबमपति ने मिजोरम के लिए महत्वपूर्ण रेल सेवा प्रदान करने के लिए केंद्र की सरकार और भारतीय रेल को धन्यवाद दिया. परियोजना की संशोधित लागत लगभग 8,213 करोड़ रुपए है. परियोजना का लगभग 93% कार्य पूरा हो चुका है.
बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय केंद्र के शोधकर्ताओं की एक टीम ने वेस्ट कमेंग जिले के मंडला क्षेत्र में एक नए पौधे की प्रजाति की पहचान हाल ही में की है. इस पौधे का नाम पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस रखा गया है. यह नई प्रजाति गैस्नेरिया की फैमिली से संबंधित है और भारत में पाए जाने वाली इसकी जेनस की केवल दूसरी ज्ञात प्रजाति है. इस महत्वपूर्ण खोज का नेतृत्व बोटानिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अरुणाचल प्रदेश क्षेत्रीय इकाई के वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा चोलू ने किया. नॉर्डिक जर्नल ऑफ बोटनी के नवीनतम अंक में प्रकाशित उनके शोध अरुणाचल प्रदेश की समृद्ध वनस्पति विविधता को उजागर करता है और क्षेत्र में अद्वितीय पौधों की प्रजातियों के डॉक्यूमेंटेशन और संरक्षण के लिए चल रहे प्रयासों पर जोर देते हैं. इस उपलब्धि पर बोलते हुए डॉक्टर चोलू ने कहा कि पेट्रोकोस्मिया अरुणाचलेंस की खोज अरुणाचल प्रदेश की अविश्वसनीय जैव विविधता को रेखांकित करती है.
एक सजन हम लोग का विजिट था मंडला तरफ वेस्ट कमेंग डिस्ट्रिक्ट, तो हमने पाया कि एक जो हम रोड किनारे से हम लोग बहुत 3 किलोमीटर अंदर चला गया और 3-4 किलोमीटर जाने के बाद वहाँ पे देखा एक केव है. मेरा जो को ऑथर है then they went inside and they searched की वहाँ पे एक प्लांट है. फिर मैंने देखा अरे हाँ यहाँ पे बहुत ही एक इंटरेस्टिंग स्पीसीज है, क्योंकि वो स्पीसीज बहुत ही अंदर था, यानी कि वो सनलाइट बहुत कम लेता होगा, लेकिन सनलाइट तो लेगा ही क्योंकि वो ग्रीन है, तो मैन्युफैक्चर इट्स ओन फूड. सो दैट इज वेरी इंटरेस्टिंग. और उसमें देखा वो छोटा छोटा दो फूल था, तो फिर उसको हम ले आए, कुछ स्पीसीज को हम वर्कआउट करा, फिर डिसेक्शन करके अच्छे से स्पीसीज को स्टडी किया कि उसका लेग ब्रेड कैसा है. वो बहुत ही वाइटिश था, पर्पल कलर का फ्लावर जो बहुत ही इंटरेस्टिंग था, बहुत हेयरी था, जो उस जेनस के लिए बिल्कुल नया था, जो वर्ल्ड में किसी से मैच नहीं कर रहा था. और हमने पाया गया कि ये पेट्रोकोस्मिया जेनस अरुणाचल से रिपोर्टेड नहीं. हमारे अरुणाचल में इतना रिच बायोडाइवर्सिटी है, वहाँ पे ये जेनस ही नहीं था. तो दिस इज द फर्स्ट जेनस रिपोर्टेड फ्रॉम दिस स्टेट एंड दिस स्पीसीज इज न्यू टू द वर्ल्ड ऑफ साइंस. सो इट्स अ अचीवमेंट फॉर आवर बीएसआई एंड ऑल्सो फॉर आवर होल साइंटिफिक कम्युनिटी.
भारत के वनस्पति परिदृश्य में इस नए जुड़ाव से शोधकर्ताओं और वनस्पति शास्त्रियों का वैश्विक ध्यान और रुचि समान रूप से आकर्षित होने की उम्मीद है. यह खोज बोटानिकल रिसर्च के लिए एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में अरुणाचल प्रदेश की स्थिति को और मजबूत करता है और वैश्विक संरक्षण प्रयासों के इसके महत्व को रेखांकित करता है. मेरा केश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर.
और अब हम आपको त्योहारों की भूमि नागालैंड से एक लोक कथा के बारे में बताते हैं. नागालैंड की जनजातीय सांस्कृतिक पारंपरिक मान्यताओं, रीति रिवाजों और प्रथाओं का एक समृद्ध और विविध मिश्रण है, जो नागालैंड के लोगों को बनाने वाली विभिन्न जनजातियों से जुड़ी हुई हैं. तो आज हम नागालैंड के लॉन्गलेग जिले में जाते हैं और स्टोन गॉड, या जिसे स्थानीय बोली में कहते हैं वेटिंग योंग, जिसका अर्थ है वो पत्थर जिसने दुश्मनों को भगाया। तो हम इसकी रोचक जानकारी के साथ आगे बढ़ते हैं। 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के शुरू के भाग में पूर्वी हिस्से से बड़ी संख्या में लड़ाके आते थे जिन्हें फामा कहा जाता था। उन्होंने लांगलेंग जिले के अंतर्गत एक छोटे से गांव तांगा को बर्बाद करने की मंशा से उसे घेर लिया था। पश्चिम में गांव का द्वार था, वहां दुश्मन ने गांव में घुसने और हमला करने की कोशिश की। अब यहां एक दूसरे से सटे तीन विशाल पत्थर दिखाई देते हैं जिन्हें कहा जाता है योंगशा योंगशु।
In an attempt to ward off the intruding enemies, a warrior by the name of Konglung threw his spears through a hole in the village main wooden gate, which pierced through a badly injured armed warrior who was at the front gate while they were trying to break open the village gate and fencing.
घुसपैठ करने वाले दुश्मनों से बचने के प्रयास में कोमलिंग नाम के एक योद्धा ने गांव के मुख्य लकड़ी के दरवाजे में एक छेद के माध्यम से अपना भाला भीतर फेंक दिया, जो सामने के दरवाजे पर मौजूद बुरी तरह से घायल एक सशस्त्र योद्धा को भेद गया।
As a result, they ran helter-skelter for their lives. In the process of their scurried running in all directions, many of them were injured by their own weapons, while some fell into deep rocky gorge below the village gate and died.
दुश्मन चौंक गए और वे अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। सभी दिशाओं में तेजी से भागने की प्रक्रिया में उनमें से कई अपने ही हथियारों से घायल हो गए, जबकि कुछ गांव के गेट के नीचे गहरी चट्टानी घाटियों में गिर गए और मर गए। सभी दुश्मन महाचिंगकांगशुंग, शिशी लेमचुंग और पोंगचिंगशुंग की ओर वाली दिशा से भाग गए और इसके नाम का लोग आज भी स्मरण करते हैं।
The enemies all ran to the directions of Manchingkangshung, Shishi Lamchung and Pongchingshung, the name of which are still used by the people today.
तांगा गांव के योद्धाओं ने दुश्मनों का पीछा किया और उनमें से कई को मार डाला।
Warriors of Tanga village chased the enemies and killed many of them. Killings continued till the next day on those who were in hiding, who were weak, injured and left behind.
पत्थर की पटिया और फल का पेड़ दोनों आज भी एक जीवित गवाह के रूप में खड़े हैं। ऐसी मान्यता है कि बड़ी संख्या में आए हथियारबंद शत्रुओं पर उस दिन की ऐतिहासिक विजय वास्तव में उन तीन पत्थरों की अप्राकृतिक और भयावह ध्वनि के रूप में कोई या तो दैवीय हस्तक्षेप था या उसे कृपा भी कहा जा सकता है। लोगों का मानना है कि ये उसी से प्राप्त हुई थी और इसी वजह से आक्रमणकारी शत्रुओं को खदेड़ना संभव हो सका था।
Both the stone slab and the fruit trees still stand today as a living witness and the particular spot came to be called the heart of Akanman.
तभी से उन विशेष पत्थरों को स्थानीय बोली में स्टोन गॉड यानी वेट्यूंग योंग कहा जाता है, जिसका अर्थ है दुश्मनों को भगाने वाला पत्थर।
इन लोकल डायलेक्ट मीनिंग द स्टोन दैट चेज अवे द एनिमीज। इवन टुडे विलेज फोक्स ऑन द वे टू द फील्ड्स और ऑन हंटिंग्स एंड फिशिंग ट्रिप्स सीक सक्सेस एंड गाइडेंस बाय अथरिंग पो बू टू द स्टोन्स एंड दे शार्पन देयर डाउज और स्पीयर्स ऑन द स्टोन्स बिलीविंग दैट दे आर रिवॉर्डेड अकॉर्डिंगली।
आज भी गांव के लोग खेतों में या शिकार और मछली पकड़ने जाते समय उन्हें विश्वास है कि हमेशा उसी प्रकार की शक्ति उनके साथ रहेगी।
द विलेजर्स ऑल्सो इन्वोक गुड वेदर बाय प्लेसिंग लीव्स ऑन द स्टोन्स। विद देन लैंड अफन्यू फॉर आकाशवाणी न्यूज कोहिमा।
अरुणाचल प्रदेश के उप मुख्यमंत्री चाउना मेन ने कहा कि अरुणाचल में 58,000 मेगावाट जल विद्युत उत्पादन की क्षमता है, जो भारत की कुल जल विद्युत क्षमता का 40% होता है। श्री मेन जो राज्य के ऊर्जा विभाग का भी प्रभार संभालते हैं, राज्य विधानसभा में अरुणाचल में जल विद्युत परियोजनाओं से संबंधित एक प्रश्न का उत्तर देते हुए बताया कि अभी राज्य में जल विद्युत उत्पादन की इंस्टॉल कैपेसिटी 1200 मेगावाट है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने हाल ही में 4 CPSU बिजली डेवलपर्स के साथ राज्यों में 13 जल विद्युत परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि इनमें से 4 परियोजनाएं प्रगति के चरण में हैं और इन्हें तुरंत शुरू किया जाएगा। श्री मैन ने कहा कि इन 13 परियोजनाओं के चालू हो जाने पर राज्य को वार्षिक करीब 10,000 करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा। राज्य के ऊर्जा मंत्री ने यह भी बताया कि लोअर सुबनसिरी जल विद्युत परियोजना 2026 तक पूरी तरह चालू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि 2800 मेगावाट की दिबांग वैली मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट का काम जोरों से चल रहा है और इसमें 12.32% भौतिक प्रगति हासिल हुई है। श्री मेन ने बताया कि अरुणाचल प्रदेश सरकार ने विभिन्न बिजली उत्पादकों के साथ 169 समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए थे, जिनमें से 53 को समझौते के उल्लंघन और अन्य कारणों से समाप्त किया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार डिफॉल्टर्स डेवलपर्स को नोटिस जारी कर रही है और असंतोषजनक जवाब मिलने पर डिफॉल्टर्स डेवलपर्स की परियोजनाओं को समाप्त करने की प्रक्रिया अपनाई जा रही है। पूर्वोत्तर डायरी के लिए मैं राकेश दोले, आकाशवाणी समाचार, ईटानगर।
और अब हम मणिपुर की बात करते हैं। मणिपुर की वालागो आट्टू या सौरिंग मछली जिसे कहते हैं, ये बहुत प्रिय भोजन है मणिपुर के लोगों का। मछलियों में वालागो आट्टू मणिपुर में अत्यधिक मांग वाली मछली कही जा सकती है। इसका उपयोग जो दावतें या त्योहार जो होते हैं उनमें जो दावतें की जाती हैं उसमें बहुतायत से होता है। हालांकि मणिपुर में इसकी मांग की तुलना में वालागो आट्टू का उत्पादन बहुत कम है, लेकिन इसके लिए मणिपुर में मत्स्य पालन क्षेत्र में एक ऐतिहासिक सफलता प्राप्त की है और इसे बता रहे हैं हमारे इम्फाल संवाददाता जे थॉकचोंग।
वालागो आट्टू, also known as sareng in Manipuri, is a freshwater catfish found in large freshwater lakes. The people of Manipur, especially Maitei community, like this fish for its unique taste and being used in religious ceremonies. However, the fish is imported in bulk from other states as local sareng are extinct from Loktak Lake and its other associated lakes. Huge amounts of money are spent every year to import sareng from other states. But under the initiative of Chief Minister N. Biren Singh, many local farmers have successfully reared sareng in valley area since last year. The government has procured thousands of sareng fingerling from various parts of the country and distributed them to the local fish farmers.
वालागो आट्टू, जिसे मणिपुर में सौरेंग के नाम से जाना जाता है, ये मीठे पानी की कैटफिश है जो मीठे पानी में बहुतायत से पाई जाती है। मणिपुर के लोग, विशेषकर मैतेई समुदाय, इस मछली को और इसके अनूठे स्वाद को अपने उत्सवों और समारोहों में उपयोग करता है और इसे पसंद किया जाता है। हालांकि मछली को अन्य राज्यों से भी आयात किया जाता है, क्योंकि स्थानीय सारंग, लोकतक झील और उससे जुड़ी कुछ अन्य झीलों में ये विलुप्त सी हो रही है। सौरेंग को अन्य राज्यों से आयात करने के लिए हर साल बड़ी मात्रा में पैसा भी खर्च किया जाता है, लेकिन मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह की पहल से कई स्थानीय किसानों ने पिछले साल घाटी क्षेत्र में सौरेंग का सफलतापूर्वक पालन किया और मछली का उत्पादन बढ़ा है। सरकार ने देश के विभिन्न हिस्सों से हजारों सौरेंग फिंगरलिंग खरीदे और स्थानीय मछली किसानों को उन्हें वितरित कर दिया। बाद में राज्य मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों के सहयोग से मत्स्य पालन में लगे किसानों ने वैज्ञानिक विशेषज्ञता के साथ साथ स्वदेशी तकनीक का ज्ञान का उपयोग किया और सौरेंग मछली का सफलतापूर्वक उत्पादन बढ़ाया। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए मत्स्य पालन विभाग मणिपुर के निदेशक हेक्रूजम बालकृष्ण ने कहा कि पर्यावरण की स्थिति में बदलाव के कारण सौरेंग लोकतक झील से गायब सी हो गई है। हालांकि सरकार ने इसके लिए बहुत से उपाय किए हैं। स्थानीय स्तर पर बहुत सारे उपाय किए जा रहे हैं किसानों के साथ मिलकर, ताकि सौरेंग का आयात कम किया जा सके। उन्होंने बताया,
एज अ डायरेक्टर ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ फिशरीज मणिपुर, वी हैव इंट्रोड्यूस्ड रिवाइवल ऑफ सौरेंग इन मणिपुर बाय इंपोर्टिंग सौरेंग फिश सीड्स फ्रॉम बांग्लादेश एंड द नेबरिंग म्यांमार। वी स्पेंड लॉट ऑफ मनी, इज वेरी एक्सपेंसिव एफेयर ऑल्सो, एंड इन कंसल्टेशन एंड एसोसिएशन विद द progressive fish farmers who have started the rearing of sareng in their or culturing of sareng in their farm ponds, we have joined hands together to carry out induced breeding of sareng seeds to make it available locally and cut down or rather stop import of sareng seeds from outside the state. Very fortunately, our painstaking task and effort paid its rich dividends on 22nd of June 2024, recently, when one progressive farmer, Mr. Kopeshwar, along with his team of fish farmers, have performed induced breeding of staring seed successfully.
स्थानीय सौरिंग मछली की लोकप्रियता ने किसानों और मत्स्य पालन विभाग के अधिकारियों दोनों से इसके उत्पादन को बढ़ाने के तरीकों और साधनों का पता लगाने के लिए प्रेरित किया है। इस प्रकार से आने वाले वर्षों में मणिपुर में इस प्रकार की मछली के अधिक उत्पादन को शुरू किया जा सकेगा, ऐसी आशा है।
द पॉपुलरिटी ऑफ लोकल सरिंग फिश motivated both the farmers and the official of the fishery department to explore ways and means to propagate seeds and perform induced breeding. Thus, a chapter has started for high production of this kind of fish in Manipur in the coming year. Jijit Hoksom, Akashvani News, Imphal.
मणिपुर में पुलिस और राज्य गृह विभाग की एक संयुक्त टीम ने इम्फाल में 5 दुकानों पर छापा मारा और बड़ी संख्या में फर्जी इनर लाइन परमिट आईएलपी आधार कार्ड सरकारी कार्यालयों की मुहरें और विभिन्न इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जब्त किए। इन दुकानों पर बड़े पैमाने पर फर्जी आईएलपी पास तैयार करने का आरोप है। मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि मामले की जांच के लिए एक विशेष जांच दल भी गठित कर दिया गया है। श्रम विभाग के एक कनिष्ठ लिपिक समेत 9 लोगों को इसके संबंध में गिरफ्तार किया गया। इनसे करीब 3,500 आईएलपी पास जब्त किए गए। मणिपुर राज्य में इनर लाइन परमिट प्रणाली 2020 में लागू की गई थी। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल करते हुए भारत सरकार के राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान NIELIT कोहिमा ने 8 जुलाई 2024 को मिस्र के छात्रों, विश्वविद्यालय के व्याख्याताओं और प्रोफेसरों तथा सरकारी अधिकारियों के लिए एक डिजिटल फोरेंसिक प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया है। 2010 में NIELIT की स्थापना की गई थी। कोहिमा राज्य की एकमात्र उन्नत डिजिटल फोरेंसिक लैब है, जो अत्याधुनिक सुविधाओं और विशेषज्ञों की एक टीम से लैस है। NIELIT कोहिमा की भूमिका के बारे में और अधिक जानने के लिए इसके निदेशक श्री एल लानुआबांग के साथ एक साक्षात्कार हम आपको सुनवा रहे हैं। ये साक्षात्कार लिया है हमारी सहयोगी सुश्री इवो ने, आइए सुनते हैं।
So thank you, sir, for joining us. So to begin with, can you give us an introduction on this NIELIT Kohima's role in leading the cyber forensic training and analysis service for law enforcement agencies?
Thank you, Akashvani, for having me on this show. I'm so glad for giving me this time. And well, NIELIT Kohima is under the Ministry of Electronics and IT Government of India, and we are the capacity building arm of Ministry of Electronics and IT. And we do a lot of skilling, capacity building program, education, implementing various government projects, research and development work, software development, consultancy work in the area of information technology, electronics and IT. As I've mentioned, NIELIT Kohima, we are the forefront in cyber forensic domain. And we set up the first research and development, one of its kind, state of art facility lab in the state in way back in 2010. And since then, we are the first in the state to have such kind of lab and imparting capacity building for the law enforcement agency, paramilitary forces, government officials. That is one aspect of training and skilling. And another thing is we also provide the forensic analysis services. Like whatever cybercrime is happening in our state, we provide an expert opinion. We do analysis and we give the report to the police.
Why has this digital forensics become so important in the context of emerging cyber threats?
Today's digital age, the nature of cyber threats or cybercrime is constantly evolving. All of us so much dependent on the technology. So it becomes vulnerable of the citizens or any government officials or any of the citizens of the country. And with this sophisticated and widespread, digital forensics is one area where it plays an important role in identifying or analyzing and mitigating these threats. It allows us to gather and analyze digital evidence, we call, right? Because the crime is happening in the cyberspace. So the evidence, in normal crime, what happened, the evidence is about, say, for example, blood stain or maybe DNA fingerprint or hair like that. Whereas in case of cyber crime, the evidence we call as a digital evidence. So suppose we are using, a social media. So in social media, there are a lot of traces or the artifact that is left behind by the users. So this is how we analyze those things that, okay, this particular person has committed a crime. So from this digital evidence, we can gather all the information.
And not only Nele Kohima is giving trainings to different officials from different departments and even the ministries. Now it has reached to international audience as well. Recently, digital forensic training program has been launched for the Egyptian participants. Can you tell us more about this?
Well, this is how it came, like when the government of India and Egypt had at the government level, like the joint MOU. And since Delhi, we have a headquarters in Delhi, and since we are under the Ministry of Electronics and IT, and as we know, our country is a forefront in technologies, especially in IT sector. Considering that, the Egyptian government approached the government of India, and that is how they have entrusted this work to NILIT. So my director general, he went to the Egypt to sign an MOU with the Institute of, there is one institute in Egypt under the Ministry of Communication IT, the counterpart in Egypt. We signed an MOU on behalf of government of India by our DG. And since, as I've mentioned, that NILIT Kohima is leading in cyber forensics within the NILIT centers, so they have given this dubs under the aegis of our NILIT and government of India, we were asked to train the professionals from the Egypt. Now, this particular training program is for the citizens as well as the professional, as well as, for the government employees of Egypt.
Moving forward, I would like to know what are some of the upcoming activities that Nele Kohima will be taking up?
Well, we have a series of programs that is coming up, and as I said, we conduct training for specialists, for the professional, for the government official, for the law enforcement agency. At the same time, because the awareness is very important, because who knows tomorrow you and me will be the victim of this cyber crime and cyber threats. So the awareness as well as, education is very important. So with this, we are offering a different awareness program as well. So if you can try to update yourself, you will become a safely participant in the digital world. That's all I can say. Thank you.
अभी आप सुन रहे थे NIELIT कोहिमा के बारे में जानकारी. हमारी सहयोगी सुश्री इवा बातचीत कर रही थी निदेशक श्री एल लानुआबांग के साथ. पूर्वोत्तर का समूचा इलाका हवाई सड़क और रेल मार्ग से जुड़ा है. कोई भी जगह अब दूर नहीं है, तो परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर पूर्वोत्तर राज्यों को अवश्य ही देखें और आनंद लें. आप यहां पहाड़ियों के मनोरम दृश्यों का आनंद ले सकते हैं और साथ ही आप पूर्वोत्तर में अद्भुत आनंद, अद्भुत क्षमता और कौशल को स्वयं देखेंगे और उसे महसूस करेंगे. तो अपने देश को देखिए और जानिए और चले आइए पूर्वोत्तर की ओर.
गुलशन यहाँ आग नहीं भरी सांपा गुरा सुना खरी सुंदर देश को
और अब आपसे अनुमति लेने का समय आ पहुंचा है. कार्यक्रम आपको कैसा लगता है हमें अवश्य बताएं. आपकी प्रतिक्रिया का हमें हमेशा ही इंतजार रहता है. हमारा ईमेल पता है airnsdtalks@gmail.com. प्रतिक्रिया और सुझाव के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9289094044. और अब हमें अनुमति दीजिए, अगले रविवार फिर आपसे मुलाकात होगी. आलेख और संकलन चंद्रिका जोशी, तकनीकी सहायक दानिश जैदी.
जहां कंचन जंघाती।
ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया।